ओम शांति।
एक प्रश्न है आप सभी से, संगम युग का सुख किन किन बातों में समाया है? हम सभी बाबा के पास इतना सुख ले रहे हैं और लेने के लिए आए हैं ताकि वो सुख संस्कार बनकर 84 जन्म हमारा साथ दे, हम अपने को पूर्णतया सुखों से भरपूर करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो किस किस चीज में सुख समाहित है, सुखों का आधार क्या क्या है? संगम योगी सुख, ईश्वरीय सुख, बोलो। याद और कुछ गहरी बातें करनी है, मोटी नहीं। किसमें है सुख? रोज हमें सुख मिले, सर्व संबंधों में एक सुख होता है, संसार में भी संबंध का सुख, और इधर संबंध बाबा से है और हमारा आपस में भी है, ऐसा नहीं केवल बाबा से है, सर्व संबंध बाबा से होने के बाद भी हमारे आपस में संबंध हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस संबंध में सुख हो, इस संबंध का सुख भी इस बात पर आधारित है कि उस संबंध में संपूर्ण सुख हो। अगर उस संबंध में संपूर्ण सुख नहीं तो यहाँ के हमारे संबंधों में भी सुख नहीं। दूसरा बोलो, बहुत गहरी बात नहीं पर हमें गहराई से देखना है। सुख है कंप्लीट सरेंडर, ठीक बात है ये। इसके साथ एक शब्द और जोड़ दें, त्याग और समर्पणता में। एक, हम समर्पित हो जाते हैं, और दूसरी बात, निरंतर हम समर्पण मेहता का अभ्यास करते हैं। हमारा जीवन, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प और बुद्धि सब में समर्पण मेहता, इसमें बहुत सुख मिलता है आत्मा को। तीसरा, बाबा की मुरली में हमेशा आता है साकार में, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, किन से, किन से नहीं, हम में भी कौन, क्वालिटी क्या उनकी, और बाबा के शब्द हमेशा वही हैं, वो बदलते नहीं, जो आत्मभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उनसे पूछो। चौथा, सुख मिलता है हमें, रोज सुख मिलता है हमें दो चीजों से, अपनी रूटीन को याद करें, एक अमृत वेले और एक मुरली, ये हमारी रूटीन में दो ऐसे हमें बाबा ने विशेष वरदान दे दिए हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुखों से भरपूर कर सकते हैं। और भी कुछ आधार है सुखों का? अब छोटी बातें, सुख देने से सुख मिलता है, सेवा भाव से सुख मिलता है, ज्ञान सुनाने से सुख मिलता है, श्रेष्ठ भावनाएं रखने से सुख मिलता है। जहां घृणा भाव हमारे सुख को छीन लेती है, वहां श्रेष्ठ भावना हमारे सुखों में वृद्धि कर देती है। तो हमें संगम युग में स्वयं में सुखों को इतना भर लेना है कि इस समय कोई भी दुख, कोई भी घटना, कोई भी डिस्टरबेंस हमारे सुख को बदल न सके। हम सुख सागर के बच्चे हैं, पूर्ण सुखी हो जाएं। हमें याद आ रहा था कल से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बातें चल रही हैं स्वर्ण जयंती के कारण, तो एक प्रेरणा मिलती है हम सबको। एक तो वो चीज है कि स्वतंत्रता अभी चाहिए, वो तो है बाहर के आगे लेक्चर करने की बात, परंतु एक विशेष प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है? बहुत बड़ी कुर्बानी, त्याग और कुर्बानी। लोगों ने त्याग और कुर्बानी कर दी, बहुत जबरदस्त कर दी, यंग एज में कर दी, शक्ति मिल गई उससे। उनके पीछे संसार चला, सारा भारत चला। इसका एक मूल कारण था उनमें त्याग और कुर्बानी की भावना, अपने लिए कुछ नहीं, सब देश के लिए। मुझे एक बात याद आई, अभी अभी किसी का एक पत्र आया मेरे पास, बीएससी स्टूडेंट। उसने पूछा कि भाई मैं 9 से 5 कॉलेज, फिर खाना बनाओ, फिर ट्यूशन, फिर तैयारी प्रैक्टिकल फिजिक्स केमिस्ट्री के, सोने में 1-2 बजते हैं, बाबा कहते 3 बजे उठो, उसको लगन बहुत। अब रोज ही जब 2 बजे सोता हूं तो आंख खुलती है 6-7 बजे, सारा दिन भी तो रेस्ट नहीं, उठते ही मन भारी हो जाता है कि आज फिर लेट हो गया, रोज वही संकल्प कि आज फिर मिस हो गया। तो मुझे लिखा कि क्या करूं मैं। तो मैंने उसको 1-2 लाइन जो लिखी वो मेरे लिए बहुत नशे की रही, और हुआ ऐसा कि 2 लाइन लिखने के बाद वो पत्र मुझे रख देना पड़ा 10 मिनट के लिए। वो ये था, मैंने उसको लिखा कि जितनी मेहनत आप बीएससी करने के लिए कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत हम में से कोई ज्ञान और योग में कर दे तो विश्व महाराजन का पद निश्चित है। ना ठीक बात, हम लोग क्यों मेहनत नहीं कर पा रहे हैं? मेरा खुद का विचार चलने लगा, हम भी पढ़ाई में करते थे हम सब, अब क्यों हम मेहनत नहीं कर पा रहे? जरा सा ज्यादा काम हो जाए तो जो कुछ होता है वो हम सब जानते हैं, अनेक संकल्प हम चलाने लगते हैं, कह रहे आए किस लिए थे, क्या करने लगे, दिनचर्या जरा सी ऊपर नीचे हो जाए तो स्थिति बदल जाती है। तो वास्तव में हमारा ये समय बहुत अच्छी तपस्या करने का है। जिसने इस समय को पहचान लिया, मैं कहूंगा वो बहुत बुद्धिमान और बहुत भाग्यशाली हैं। समय के बारे में बाबा ने, हम सब जानते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया है, यही कह दिया है कि समय की घड़ी तुम हो, सुइयां तुम हो, मेरे से नहीं पूछो समय कैसा है, कितना है। तुम अपनी क्लीन और क्लियर बुद्धि से जान सकते हो समय की रफ्तार क्या है। बाह्य परिस्थितियों को देखकर ही नहीं समय को पहचाना जा सकता। प्राय हम सब और संसार के सभी लोग बाह्य परिस्थितियों को देखकर समय का अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं, और जब समय बदल जाता है तो उनके अंदाजे बदल जाते हैं। परंतु समय की पहचान एक और चीज से हमें होती है, वो है स्वयं की स्थिति। ब्राह्मण परिवार में क्या फ्लो है, किस तरह की वेव्स हैं, यहाँ कौन सी तरंगे हैं, कैसा माहौल है, उससे दिखाई देता है कि समय कैसा आ गया है। आप सब देख रहे हैं कि इस वर्ष अभी 2-3 माह से हमारे ब्राह्मण परिवार में एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन आया है। लगता है आपको भी आई है क्रांति ब्राह्मण परिवार में? यहां आई है तो बाहर भी आ गई है। क्रांति का अर्थ है कि हर व्यक्ति कुछ करने के लिए तैयार हुआ है, और आप पाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह देखेंगे कि अगले साल ये क्रांति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हर ब्राह्मण बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। अनेक ब्राह्मण बहुत कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब जरा हम अपनी अपनी मन की स्थिति को चेक करें, क्या हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं? मैं अपने से पूछता हूं और आपसे भी अब पूछ रहा हूं कि हमारा जो लक्ष्य है बहुत महान, क्या हम उसे पाना चाहते हैं? आप उत्तर मुख से ना दें, अपने से पूछें आप भी कि जो हमारा महान लक्ष्य है संपूर्ण बनना, जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा बाबा को भी 33 वर्ष बहुत गहन तपस्या करनी हुई, हम सब जानते हैं उसको, छोटी तपस्या नहीं, बहुत बहुत गहन, वही संपूर्णता का लक्ष्य हमारा है, क्या हम सचमुच उसको पाना चाहते हैं? हमारा अंतर मन क्या कह रहा है, क्या हम देखते हैं अपनी संपूर्ण स्थिति को कि यहां पहुंचना है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम पाना चाहते हैं, सचमुच अगर हम पाना चाहते हैं, ये चाहना बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य को जिस चीज की चाहना होती है संसार में, उसके लिए उम्र मिटता है, उसको प्राप्त करने के लिए वो रात दिन काम करता है, उसको प्राप्त करने के लिए वो और सब चीजों का सहज त्याग कर देता है, कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती। आज गलत काम करने वालों को भी बाधाएं नहीं रोक पा रही। तो जिनका लक्ष्य महान हो और जिनके लक्ष्य के पीछे संसार का भला समाया हुआ हो, क्या उनको उस लक्ष्य को पाने की इच्छा है? आप इस पर चिंतन करें इस भट्टी में। अगर सचमुच हमारे सामने कोई महान लक्ष्य है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी अपने लक्ष्य के बारे में सोचा ही ना हो। ऐसे भी ब्राह्मणों में कई ब्राह्मण हैं जो बहुत साधारण रूप से आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा लक्ष्य था वो पूर्ण हो गया और बड़ा लक्ष्य लोप हो गया। उदाहरण के लिए किसी का लक्ष्य था यहां आ जाएं, आ गए, लक्ष्य पूर्ण हो गया। उसके बाद का जो लक्ष्य है, जिसके लिए वो लक्ष्य था, वो विस्मृत हो गया। अगर स्मृति में है तो उसके सामने अनेक दीवारें दिखाई देती हैं, लेकिन क्या सचमुच दीवारें हैं? क्या कहेंगे आप, क्या सचमुच दीवारें हैं? नहीं है, दिखाई देती हैं केवल, या हमने क्रिएट कर ली है या बनावटी दिखाई दे रही है हमें। ये संपूर्ण सत्य बात है। हमारे महान लक्ष्य के सामने कोई दीवार नहीं, और दीवार उसके लिए नहीं जिसमें त्याग वृत्ति हो। बस एक ही चीज हमें ब्राह्मणों को भूलना नहीं चाहिए, जो भूल गए हैं। अब हमारे ब्राह्मण परिवार में बीच के 15 साल मैं बहुत स्पष्ट जानता हूं और कह सकता हूं कि हम सब त्याग वृत्ति को विस्मृत कर चुके हैं, और यही कारण हुआ कि तपस्या बहुतों की ढीली पड़ गई। जिन्होंने अपनी त्याग भावना को जागृत रखा उनकी तपस्या ढीली नहीं पड़ी, पर अधिकतर ने त्याग भावना को एक तरफ रख दिया कि जैसे त्याग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर फिर से आगे बढ़ें। समर्पणता की बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पण तो हमें होना ही पड़ेगा। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, ये होना उसको पड़ता है जो नहीं है। आप कह सकते हैं हम सबको समर्पित होना ही पड़ेगा, और समर्पणता का सबसे सुंदर स्वरूप है और गुह्य भी है, लेकिन बहुत गुह्य भी नहीं है, कर्मों में समर्पणता। आज हम थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। सबसे सूक्ष्म समर्पणता तो मन और बुद्धि की है, हम जानते हैं, पर मन बुद्धि को हम क्यों समर्पित नहीं कर पाते? क्योंकि कर्मों में समर्पणता नहीं है। नहीं है तो क्या है? कर्मों में समर्पण मेहता नहीं है तो क्या है? बोलो, है अपनापन, और क्या है? मैंने किया। और जब हम कर्म कर लेते हैं, देखिए कर्म मनुष्य को सबसे ज्यादा बांधता है। संकल्प भी बांधते हैं, पर सबसे ज्यादा बांध रहा है मनुष्य को कर्म। अच्छा कर्म भी और बुरा कर्म भी। अच्छा कर्म क्यों बांध रहा है? क्यों बांधता है अच्छा कर्म? कहीं कहीं तो दिखाई देता अच्छा कर्म ज्यादा बांध रहा है। पाप छूट गया है, क्यों बांधता है? मैंपन तो है ही। कर्म करने के पीछे भावना क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि हम कर्म करने के पीछे अपनी भावना को जरा समझ लें अच्छी तरह। कोई भी श्रेष्ठ कर्म अगर किसी स्वार्थ की भावनावश किया जाए तो वो श्रेष्ठ कर्म बंधन बन जाता है। मनुष्य को कर्म के पीछे कामना रहती आई है हजारों साल से, इसलिए उसे आदत पड़ गई है कामना युक्त होकर कर्म करने की। उसे इसलिए आदत पड़ गई, वो देख रहा है कि दूसरे व्यक्ति ने ये कर्म किया, उसकी बहुत प्रशंसा हो गई, आगे बढ़ गए वो, उन्हें पद पोजीशन मिल गई है, इसलिए स्वयं में भी कर्म के पीछे कामनाओं की अधिकता हो जाती है। और कामना के बाद, कर्म के बाद कामना के अनुकूल अगर प्राप्ति नहीं होती तो संकल्प चलते हैं, कर्म को छोड़ने की इच्छा होती है, सेवाओं में टकराव होता है लोगों का। उसका कारण क्या कारण हुआ, क्या कारण हुआ? सेवा जैसे श्रेष्ठ कर्म के पीछे स्वार्थ की भावना, सेवा के बाद कुछ चाहती है आत्मा प्राप्त करना, जो मिलने वाला उसे भूलकर कुछ क्षणिक प्राप्ति चाहती है, जिसे बाबा ने कच्चा फल कहा, कुछ क्षणिक प्राप्ति। और अनेक मनुष्य संसार में प्रशंसा के कारण कर्मों में आगे बढ़ते हैं। कर्म करने का लक्ष्य प्रशंसा, और जिस व्यक्ति के पीछे मन में ये लक्ष्य हो कि कर्म के बाद प्रशंसा मिलनी चाहिए, उसको अगर कर्म में निंदा मिल जाए तो क्या होगा, कर्म करने की उमंग खत्म, मूड ऑफ, कर्म करने की क्षमता भी ढीली पड़ जाएगी। ये संसार में हो रहा है। तो हम सभी अपने कर्म को बहुत बहुत साक्षी भाव से करना सीखें। हमने ज्ञान लिया है, हम योग अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो ये सब कुछ करते हुए हमारे श्रेष्ठ कर्म हमारे लिए बंधन बनते जा रहे हो। कर्म साक्षी भाव से करना, साक्षी भाव के साथ एक शब्द और जोड़ देना चाहिए, सहज भाव से और साक्षी भाव से करना, और करने के बाद उसको समर्पित कर देना, भक्ति में भी समर्पणता का बहुत बड़ा महत्व है। आप में से बहुतों ने किया भी होगा, काम करो श्री कृष्ण अर्पणम, सुना है, भक्त लोग करते हैं, काम करो प्रभु अर्पण कर दो, धर्मशाला बनवाई, मंदिर बनवाई, प्रभु अर्पण। ये नहीं कि मेरा नाम हो जाए, मैंने बनवाया है, इस तरह अगर कामना रहती है तो उस कार्य के द्वारा अनेक आत्माओं को जो सुख मिलेगा उसका फल कम हो जाएगा। तो हम जरा अपने कर्म क्षेत्र को अच्छी तरह चेक करके सुखदायी बनाएं, हमारे कर्म हमें आगे बढ़ाने वाले हों, हमारे कर्म हमारे मन को शांत करने वाले हों। आप इस एक लाइन पर विशेष अटेंशन दे के प्रयोग करें, हमारा कर्म क्षेत्र हमारे मन को शांत करने वाला हो। अगर उत्तेजित करने वाला है, अगर मन की स्पीड को बढ़ाने वाला है, अगर डिस्टरबेंस पैदा करने वाला है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा हमें? देख लें हमारे कर्म करने की कला में कहां गलती हो रही है, उसके पीछे कामना है या कोई और स्वभाव है जो कर्म करते हुए हमें सुख स्वरूप स्थिति में नहीं रहने दे रहा है। तो फाइनली हमें यहां तक पहुंचना है कि कर्म करते हुए हमें ऐसा आभास हो कि जैसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्म करते हमें ऐसा आभास हो कि हमारे कर्म हमारे पिछले कर्म बंधन को नष्ट करते जा रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं और ये कर्म पिछले पाप के बंधन को नष्ट करते जा रहे हैं। हमें ऐसा लगे कि ये कर्म बाबा ने हमें दिया या ये परिवार बाबा ने हमें दिया, ये हमारे बहुत बड़े पुण्यों का फल है। लगता आपको ऐसा कि ये जो परिवार बाबा ने हमें दिया है ये हमारे पिछले पुण्यों का फल है? क्या निकलेगी? अंदर की आवाज है, निकलेगी अंदर की आवाज के है ऐसा, या सोचते हैं कि इससे अच्छा तो लौकिक परिवार बहुत अच्छा था, चार लोग थे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी आपस में, बहुत सुख से रहते थे, इधर एक तो लंबा चौड़ा परिवार और उसमें भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं है, फिर भी सब महान हैं, हैं सभी महान हैं। मैं वो हंसी की बात सुनाता आ रहा हूं, कई जगह हमने एक जगह जो काम दिया था कि सभी को महान आत्मा देखो, हॉस्पिटल में भी दिया था, हम ये काम सब जगह देते हैं, तो हमने एक बहन से पूछा 3 दिन के बाद कि बहन जी आपने सभी को महान आत्मा की दृष्टि से देखा? तो कहा हाँ देखा, सबको देखा केवल 2 को छोड़कर, केवल 2 को छोड़कर बाकी सबको महान आत्मा की दृष्टि से देखा। वो तो आप समझ गए क्यों 2 को छोड़ा होगा, तो कोई 2 को छोड़ देता है, कोई 4 को छोड़ देता है, बाकी सब महान, ये महान नहीं। तो इस परिवार में हमें सुख मिले और ये परिवार हमें प्रिय लगे, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है हम सबके लिए कि हमें ये परिवार प्रिय लगे। आपने बाबा का ये महावाक्य सुना है कि बाबा से प्यार है तो परिवार से प्यार, बाबा उस प्यार को स्वीकार नहीं करता कि कोई कहे मेरा बाबा से बहुत प्यार है लेकिन परिवार से नहीं। सीधे यही सब थे बाबा के कि बाबा इस प्यार को स्वीकार नहीं करता। तो हमें ये ईश्वरीय परिवार बहुत प्रिय लगे। कैसी वृत्ति रखेंगे हम, क्या सोच कर रखेंगे हम, बोलो। क्योंकि जो कुछ आज घर घर में हो रहा है वो हमारे परिवार में ना हो। घर घर में क्या हो रहा है कि अगर एक माँ है और 2 कन्याएं हैं तो जैसे ही कन्याएं थोड़ी बड़ी हुई अब उनकी आपस में 3 होगी नहीं बनती, बाप है और बच्चे हैं तो बड़े होने पर उनकी आपस में नहीं बनती, कहीं पति पत्नी की नहीं बन रही है। तो घर घर में संघर्ष जैसा है, कोई किसी से संतुष्ट नहीं, कोई किसी को प्रिय नहीं, कोई किसी को स्नेह नहीं दे रहा है, लेने की सबको इच्छा है। हमारे परिवार में हम इससे ऊपर उठ जाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने ज्ञान को इमर्ज रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक अभी अभी की बहुत प्रैक्टिकल घटना बताऊं। एक भाई को यहां रखा था किसी ड्यूटी पर, जिनके पास वो था, जब तक उसे ये पता था कि भाई ये सेवा में है तो बहुत अच्छा था व्यवहार। जिस दिन उन्हें ये पता लगा कि इसको ट्रायल पर रख लिया गया है, एक वंडरफुल चेंज उसमें देखने को आई। जो यहां रहते हैं वो उनको देखना न चाहें, वो कहें इनको हटाओ मेरे आगे से, क्यों रखा इनको। जैसे ही वो उनके सामने आए और इनका क्रोध बढ़े, बिल्कुल साफ दिखता था कि किसी पिछले जन्म की शत्रुता है बहुत गहरी। इस जन्म का तो कुछ भी नहीं जान न पहचान, पिछले जन्म की कोई बहुत कड़ी शत्रुता है, जो उनका चेहरा देखते ही उनको क्रोध आता है और कहते हैं हटाओ इसको यहां से। तो हमें ज्ञान कैसे इमर्ज रखना अपनी बुद्धि में कि हम सब जो यहां इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम सब के आपसे कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे दोनों बुरे नहीं, अच्छे भी बहुत और थोड़े से बुरे, ऐसा कहें 80% अच्छे 20% नेगेटिव, इससे ज्यादा नहीं। तो हम 80% को तो एंजॉय करते हैं लेकिन 20% को, इसको भी एंजॉयमेंट का साधन अगर हम बना लें, परंतु कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? शुभ भावनाओं से। शुभ भावनाओं में जादू है, बहुत बड़ा जादू। ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती कि हमारी किसी के लिए शुभ भावना न हो, शुभ भावना हो और उस संबंध में स्नेह न हो। जहां संबंध में शुभ भावना है वहां स्नेह तो है ही। इसलिए अपने संगठन में भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं होते हुए भी भावनाओं को श्रेष्ठ रखते हुए स्नेह का माहौल हम क्रिएट कर सकते हैं, हम करें। बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छी बात पहले पहले कही है कि अगर दूसरा व्यक्ति आगे नहीं आता, मान लो दो का झगड़ा हो गया, दोनों ही सोच रहे हैं कि वो पहले बोले, दोनों ही सोचते हैं ना अहम के कारण कि वो पहले बोले तो ठीक हो, दोनों ही चाहते हैं कि बोल लें, लेकिन शुरुआत पहले वो करे, हम नहीं, क्योंकि अगर हम शुरुआत करेंगे तो क्या समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, हम हार गए, हमारी कमजोरी थी। दोनों चाह रहे हैं कि बोल लें, ठीक नहीं है, संकल्प चल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा, दोनों ही चाह रहे हैं कि पहले दूसरा बोले। तो बाबा कहते थे कि जो शुरुआत करे वो महान बन जाएंगे, जो शुरुआत करेंगे, जो झुक जाएं यहां, जो इसको अपनी हार न समझें, उनमें महानता आ जाएगी। ये झुकना झुकना नहीं, वास्तव में आत्मा में शक्ति भरने का साधन बन जाता है। तो इस तरह से हम इस परिवार को बहुत बहुत सुखदायी बनाएं। एक दूसरी बात जो भट्टी में क्लास चल रही है, मैंने पूछा था कि टॉपिक क्या है, तो किसी ने भी टॉपिक नहीं बताया मुझे, तो मैं जो उचित समझता हूं वही आपके सामने बोल देता हूं। पहुंचा नहीं, अभी बता दो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, मैं यहीं से शुरू कर रहा था। हाँ, मैं दोनों सोच कर आया था। हाँ, वो खराब हो रहा था, 6 बार लगाया और 6 बार कट गया। मैं समझा कि टॉपिक की बात हो रही होगी, लेकिन पहुंचा नहीं, तो चल अब मैं जो बात बोलने जा रहा था वो वाक संयम की ही शुरू कर रहा था। वाक संयम संस्कृत शब्द है पर बहुत अच्छा है, बोल पर संयम, वाक संयम से प्राप्त होती है क्या, वाक सिद्धि। हमें अपने बोल पर संयम करना है। लोग कहते हैं दुनिया में साइलेंस इज गोल्ड एंड स्पीच इज सिल्वर। आजकल ये विचारधारा बदल गई है, या हम बदल दें इसको, कि साइलेंट होना, जब किसी ने मुंह ही बंद कर दिया हो, किसी ने मौन रख लिया पूरे जीवन का, तो उसका महत्व है, या बोल पर संयम रखने का महत्व है। संयम रखने का महत्व है, इसलिए साइलेंस इज गोल्ड बट स्पीच इज डायमंड, कंट्रोल्ड स्पीच इज डायमंड, ऐसा कहें। ऐसे बोल जो बिल्कुल संयमित हो, हम चुप नहीं रह सकते। मैं सोचता हूं कि जब भगवान ही संपूर्ण साइलेंस से आके बोलने लगा तो हम क्यों चुप हो जाएं? हमें तो ज्ञान भी देना है ना दुनिया को। अगर बाबा भी कहता कि साइलेंस इज गोल्ड, तो मैं भी आ गया हूं, साइलेंस इज गोल्ड, तो काम चलता। हम उसे साइलेंट रहना नहीं देना चाहते। बाबा आया है कई बार, दृष्टि दे के जाना चाह तो सबने कहा कि नहीं बाबा कुछ सुनाओ, और बाबा भी क्योंकि मुरलीधर है तो बिना मुरली सुनाए उसको भी चैन नहीं होता, ये देखा गया। जब शुरू कर देता है तो चाहे सवेरे के 8 बज जाए या 10, चलता ही रहता है फ्लो। हाँ, फिर भी ज्ञान देना है ना उसे। दृष्टि से हम केवल इतना कैच कर लेंगे वो क्या बोल रहा है, ये काफी नहीं होगा। संपूर्ण ज्ञान, बहुत बड़े रहस्य जो आज तक फिलोसोफर्स और आचार्य दार्शनिक खोजते आए, वो दृष्टि से नहीं हो सकता, वो तो बोल से ही स्पष्ट होगा। तो हमें दूसरों को ज्ञान भी देना है, और ज्ञान के साथ और क्या देना है, और क्या देना है, वरदान देना है। अब तक हम ज्ञान दे रहे हैं, और अब समय तेजी से हमारे सामने आ रहा है जब हमें वरदान देना है। हमारा एक एक ईश्वरीय ज्ञान का महावाक्य संसार के लिए वरदान बनकर उतरेगा तो हमारे बोल का महत्व है। हमारे बोल लिखे जाएंगे स्वर्ण अक्षरों में, जो कुछ हम कहेंगे वो विधान बन जाएंगे, वो भक्ति के रसम रिवाज बन जाएंगे, तो हमारे बोल का संपूर्ण महत्व है। अब मैं ये तो आपको नहीं कहूंगा कि धीरे बोलो, मीठे बोलो, कम बोलो, ये तो पुराना स्लोगन हो गया, इसकी अब जरूरत नहीं रही। अब जरूरत है किसकी? भाई धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये तो रॉयल्टी है हमारी। हम सब जो महान आत्माएं हैं, जिनको ये फील हो गया है कि हम महान हैं, उनके अंदर ये तो संस्कार बन गया है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। मीठा भी बोलना है, बहुत लोग मीठा बोलना चाहते हैं और फेल होकर पश्चाताप करते हैं कि क्यों हम मीठा नहीं बोल पाए। कम बोलना चाहते हैं, ज्यादा बोलने के बाद फिर सोचते हैं कि कम बोलना चाहिए था, इनके पीछे रहस्य क्या, क्यों व्यक्ति मीठा नहीं बोल पाता, किससे हम मीठा नहीं बोल पाते। हमारे सामने दो व्यक्ति खड़े हों, एक से हम बहुत मीठा बोलते हैं, दूसरे से नहीं। जिनके प्रति भावनाएं श्रेष्ठ हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, उनसे मीठा, और जिनके लिए जरा भी घृणा भाव है उनके लिए कड़वापन। तो हम क्या बदलें? बोल को बदलने के लिए अपनी भावनाओं को बदलें, वृत्ति को बदलें। जब तक हमने वृत्ति न बदली, हम रोज प्रतिज्ञा कर लें, राखी बंधवाते रहें, लिख के भी दें कि मीठा बोलेंगे आज से, मुख से कोई कड़वा वचन नहीं निकालेंगे, लेकिन जब तक वृत्ति कड़वी है तब तक बोल कड़वे निकलेंगे ही। स्वतः हमारी वृत्ति हमारे बोल को प्रेरित करती है। हम कुछ बहुत सोच के नहीं बोलते हैं, हमारी वृत्ति बस स्विच ऑन हुआ वृत्ति का और टेप रिकॉर्ड चालू। हम क्या फिर बोलते हैं ये डिपेंड करेगा हमारी वृत्ति पर। इसलिए घृणा वृत्ति को विशेष रूप से बदलना है। एक ही बहुत खतरनाक चीज है मनुष्य आत्मा के लिए, घृणा वृत्ति। हमने बहुत परिवारों के केसेज में देखा कि बाप और बच्चे का संबंध बिगड़ गया। बाप के मन में बच्चे के लिए स्नेह बदलकर घृणा में चला गया और घृणा होते ही दोनों के संबंधों में टेंशन रात दिन बढ़ती ही गई, चरम सीमा पर पहुंच गई। उन्हें पता नहीं चल रहा कि इसको कैसे ठीक किया जाए, बिल्कुल पता नहीं चलता, इतना भयानक रूप ले लिया। ज्ञानियों में भी हो रहा है ये, ज्ञानी बाप बेटे में और अज्ञानियों में भी जहां तहां। कहीं बाप ज्ञानी है, बच्चा अज्ञानी है, दोनों के संस्कार नहीं मिलते तो ये हो रहा है। परंतु मूल इसका कारण है घृणा। अगर बाप ज्ञानी है और उसके मन में घृणा है तो वो अपने को ज्ञानी मानेगा कि भाई अपने जो ज्ञानी हैं उनसे प्यार, जो अज्ञानी हैं उनसे घृणा, ये ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए जिस क्षण घृणा स्नेह में बदल गई संबंध ठीक हो गए, तो हम अपनी वृत्ति को बहुत सूक्ष्मता से चेक कर लें, अपने लौकिक के लिए, अलौकिक के लिए, इस परिवार में, तो हमारे बोल में मधुरता स्वतः ही आ जाएगी। रही बात कम बोलने की, कुछ लोग बोलते ही ज्यादा हैं, अगर वो टकरा जाएं आपसे तो आप सोचेंगे कि फंसे आधा घंटे के लिए, अब तो आधा घंटा भाषण सुनना ही पड़ेगा, आप किनारा कर जाएंगे, वो आ रहे हैं भाई जल्दी जाना है, जरा इधर को निकल जाओ, देख न ले हमें, ओम शांति भी कर दी। कई होगा तो ऐसा है, एक दो आत्माएं ऐसी हैं उन्हें कोई ओम शांति कर दे वो उसे रोक के आधा घंटा ओम शांति का उत्तर देते हैं, तो लोग रात को 10 बजे 9 के बाद उन्हें ओम शांति नहीं करते, कहा नहीं तो 11 12 बजा देंगे। कौन ज्यादा बोलता है, इसके पीछे भी हम रहस्य को समझ के उसके बीज को ठीक कर लेंगे तो ये संस्कार खत्म हो जाएगा। कौन ज्यादा बोलता है, जिसका कोई सुनता नहीं वो तो इसलिए नहीं सुनते कि वो ज्यादा बोलते हैं। कौन ज्यादा बोलते हैं, और जरा और अंदर चलें, जिसको सिद्ध करने की ज्यादा और थोड़ा सा गहराई में चलें, जो अपने को ज्यादा समझदार या बुद्धिमान समझते हैं वही सिद्ध करना चाहेंगे। और लेकिन बुद्धिमान वो कौन? बुद्धिमान वो जो कम शब्दों में ज्यादा रहस्य स्पष्ट कर दे, वो नहीं कि एक घंटा लेक्चर किया हो और पांच मिनट की सार की बात भी ना निकली हो, लेकिन पांच मिनट भाषण किया हो और लोग चिंतन में उतर जाएं गहरे, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ना पड़े। ये तो हम भाषण की बात कर रहे हैं, परंतु रोज की दिनचर्या में बुद्धिमान वो जो कम वाचा के प्रयोग के द्वारा ज्यादा रहस्य बता दे, काम की भी ज्यादा बात कर ले। जो व्यक्ति ये समझता है एक एक चीज बहुत डिटेल में बताता है, उससे क्या नुकसान होता है? मान लो दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर है एक नर्स। डॉक्टर को नर्स को कोई चीज बतानी है, बहुत ज्यादा विस्तार, अननेसेसरी विस्तार हो रहा है 15 मिनट, तो क्या नुकसान होगा नर्स को? नहीं, याद तो रहेगा ही नहीं। जरा गहराई से सोचो, आपका ही पॉइंट है, उनकी सोचने की विवेक शक्ति छीन पड़ने लगेगी। इसलिए हमें संगठन में यह भी सोचना है कि सब कुछ हम ही क्यों कर दें, दूसरों को भी तो अपनी बुद्धि का विकास करने का मौका देना। हम बस स्टार्ट कर दें, स्विच ऑन कर दें, फिर दूसरी आत्मा के पास भी बुद्धि है, वो भी अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहते हैं, हम उन्हें एक खुला ओपन स्थान दें, माहौल दें, जिसमें हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास कर सके। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग ये समझते हैं, मिलिट्री के कर्नल साहब बैठे तो मिलिट्री के ऑफिसर्स क्या सोचते हैं कि मिलिट्री के जो जवान है ना, वो बुद्धि का ज्यादा प्रयोग न करें, यही सोचते हैं ना? मुझे पता नहीं, ज्यादा लोग सुनाते हैं ऐसा कि बुद्धि का ज्यादा प्रयोग सोल्जर्स ना करें, वो ऑफिसर्स का काम है, वो केवल ऑर्डर को फॉलो करें। अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये सोच लें कि बुद्धि का प्रयोग मैं करूं, बाकी सब ऑर्डर को फॉलो करें, तो क्या होगा? क्या होगा 6 मास में? क्या हो जाएगा 6 मास में? ये हो जाएगा कि मेरे ऑर्डर को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। मिलिट्री में तो सुनने के लिए बाध्य हैं, उनको सिखा दिया गया है, लेकिन यहाँ तो बाध्य नहीं है ना। यहाँ तो अनेक राजा बैठे हैं, एक राजा नहीं है, यहाँ अनेक राजा हैं। हो सकता है सबके सब राजा हों किसी जन्म के, तो उनमें दूसरों का ऑर्डर सदा ही मानने का संस्कार नहीं है। इसलिए इस तरह कम बोलने को अपनी रॉयल्टी बनाना चाहिए। मैं जिस बात पर आप सबका ध्यान दिलाऊं, जिसकी आवश्यकता है समय के अनुसार, कि हमारे बोल में पहली चीज सम्मान, बात बड़ी कॉमन है, सम्मान, दूसरी चीज स्वमान और वरदान। हमारे बोल सम्मान युक्त, स्वमान युक्त और वरदान युक्त होने चाहिए। इससे हमें बोल का भी सच्चा सुख प्राप्त होगा, हमारे अपने ही बोल दूसरों को भी आनंदित करेंगे और हमें भी करेंगे, हमें भी करते हैं। स्वयं के बोल स्वयं को बहुत सुख देते हैं और दूसरों को भी देते हैं। सम्मान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे परिवार में सम्मान की भावना। अनेकों की भावना सूखती हुई देखी गई है, क्योंकि हम सब आपस में इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे रहने के कारण क्या क्या देखते रहते हैं? एक दूसरे की कमियां, और क्योंकि आपस में रहते हैं तो फ्रेंडली बहुत रहते हैं, ऑफिशियली तो रहना भी नहीं है, फ्रेंडली रहने के कारण सम्मान की भावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन जहां हम फ्रेंडली रहते हैं, बहुत सरल रूप से आपस में रहते हैं, वहीं हमें जो हमारे बारे में रियलिटी है उसको भूलना नहीं चाहिए, कि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके जीवन में त्याग का बल, ज्ञान का बल, पवित्रता का बल और बहुत सारे श्रेष्ठ संकल्पों का बल है। इसलिए फ्रेंडली रहते हुए उनके लिए अपने मन में सम्मान की भावना रखना हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम क्योंकि यहां बहुत सब इकट्ठे रहते हैं और सभी लोग बहुत समर्पित होकर रहते हैं, तो कभी कभी हम दूसरों की समर्पणता के महत्व को भूले रहते हैं। समर्पणता का बहुत बड़ा महत्व है, हम भूल न जाएं। जो व्यक्ति अपने को समर्पित कर रहा है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी छुपी होंगी? एक कुर्बानी की, दूसरे त्याग की, और बहुत समर्पित बैठे हैं यहां। बोलो गंजे, सुनीता, जो समर्पित कर रहा है अपने को उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? त्याग भी छुपा हुआ, बाबा के प्रति बहुत प्यार छुपा हुआ है, संसार के प्रति बहुत वैराग्य छुपा हुआ है, तभी तो वो समर्पित होने के संकल्प कर रहे हैं। तो हम अपनी समर्पणता के पीछे छुपी हुई शक्तियों को भी देख लें, और जो भी समर्पित होने के इच्छुक हैं उनमें भी वही शक्तियां छुपी हुई हैं, बीज हैं उनमें उन शक्तियों के, इसको जानते हुए एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना को जागृत रखें। जब हम आपस में कार्य में रहते हैं तो कार्य में क्या करें जो बोल संयमित रहें। हमें काम कराने भी हैं, करने भी हैं, कहीं हमारे साथी हैं, कहीं छोटे आपके साथ हैं, कहीं बड़े हैं, सबके साथ, तीनों के साथ बोल पर संयमित रहे, सम्मान की भावना बनी रहे। ऐसा बोल मुख से न निकले जो शाम को या सवेरे पश्चाताप करना पड़े। हमारे बोल दूसरों को उत्साह भी दिलाएं और हमारे बोल समस्याएं समाप्त करने वाले हों। सबसे ज्यादा काम में अंडरलाइन करने वाली बात है कि हमारे बोल समस्याएं समाप्त करने वाले हों, समस्याओं को बढ़ाने वाले नहीं। बढ़ाते हैं ना बोल समस्याओं को। एक घर में दो ही व्यक्ति रहते हैं, पति पत्नी केवल, बच्चे सब वेल सेटल्ड हैं, अलग रहते हैं, अपनी अपनी सर्विसेज में हैं, पति पत्नी हैं केवल, खाने पीने को सब है, पैसा है, मकान है, ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन बहन जी बहुत बोलती रहती है सारा दिन, तो भाई साहब तंग रहते हैं उससे। और कोई समस्या नहीं, और कोई समस्या नहीं, लड़ते भी नहीं, कोई इंटरफेरेंस भी नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। वो तो प्रैक्टिकल बात है, कहीं भाई बोलते होंगे, भाई खुश हो रहे हैं बात सुन के जरा, तो एक उनमें से ज्यादा बोलते रहते हैं सारा दिन, चुप नहीं रहते, तो दूसरा व्यक्ति उससे तंग रहता है। तो क्या करें? बोलो, काम काज में क्या करें, जहां समस्याएं भी होती हैं, जहां गलतियां भी होती हैं। हमारे बोल पर संयम की परीक्षा तब ज्यादा होती है जब हमारा साथी गलती कर देता है। जब हम टाइम पे आ गए वो ठंडा ठाकुर है, देर से आता है रोज। जब हम अपने काम एक्यूरेट करते हैं वो सारे अधूरे छोड़ के जाते हैं। हम अपने काम के लिए बहुत सिंसियर हैं, वो बिल्कुल केयरलेस हैं। ऐसे में हमारे वाक संयम की परीक्षा है। क्या करेंगे हम? डॉक्टर बताएंगे, उनको ये समस्या आती होगी। हम तेज हैं काम करने में, हम चाहते हैं दूसरे भी तेज हों, एक्यूरेट हों, लेकिन दूसरे ठंडे ही हैं। जन्म ही ठंडाई से लिया है, तो क्या करेंगे? हम शांति कर दो, क्या करेंगे? बोलो, प्रैक्टिकल बात होती है ना, इसमें झगड़े होते हैं, कहा सुनी होती है, उल्टा सुल्टा बोलना होता है, संबंध बिगड़ते हैं, कोई निराश होता है, कोई परेशान होता है। और बोलो, और बोलो, देखते हुए ना देखे इससे तो काम नहीं चलेगा। और बोलो, उनका संस्कार ही ऐसा है। क्या ऐसे व्यक्ति को सुधारा भी जा सकता है? बोलो, जो कहते हैं हाँ, या कहते हैं बिल्कुल असंभव, बहुत देख लिया करके, असंभव। हमारे पास पांच सुस्त महादेव थे यान सरोवर में, जिनको सभी ने सर्टिफाई कर दिया था कि ये जीवन भर सुस्त महादेव ही रहेंगे, हर तरह सुस्त, खाना खाने रहे हैं तो भी सुस्त, एक घंटा लगाएंगे, मुरली पढ़ना है तो भी 2 घंटे चाहिए, अब काम करने में कितना लगता होगा, आने में भी सुस्त, तो उठने में भी सुस्त, तो सोने में भी सुस्त, देर से सोते थे। लेकिन 5 चुस्त हो गए, 1 साल लगा, जादू तो नहीं कि 1 दिन में हो जाएगा, लगा तो 1 साल, पर वो 5 चुस्त हैं, अब उन्हें कोई सुस्त नहीं कह सकता। तो हम आत्माओं को चुस्त भी कर सकते हैं, परंतु आवश्यकता किस चीज की है कि जो व्यक्ति उन्हें चुस्त करना चाहता है वो क्या करे, खुद तो चुस्त होंगे ही, खैर वो बात नहीं, उनके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत कराए। और वो इससे नहीं होगी कि हम रोज उनके लेट आने पर उन्हें डांट दें कि तुम तो सुस्ती हो, तुम सुधरने वाले नहीं, संसार बदल जाए, तुम नहीं बदलोगे। अगर हम ऐसे महावाक्य उच्चारण कर देते हैं 2-4 तो क्या होगा, वो और सुस्त होते जाएंगे, महान आत्माओं के वाक्य महावाक्य बन के वरदान हो ही जाते हैं। हम तो कह ही देते हैं ना, जब गुस्सा करते हैं, भाई तुम तो बदलने वाले हो ही नहीं, कितनी बार सिखाया है, पता नहीं कैसी बुद्धि है तुमको, तुम नहीं बदलोगे। और बाबा ने इस बात के लिए मना किया है, किसी को ये न कहो कि तुम नहीं बदलोगे, ये है, किसी को ये न कहो कि तुम नहीं बदलोगे, ये है श्रापित करना। और अगर 10 लोग किसी को कहने लगे, हमारे वहां भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक भाई कपड़ा कॉन्शियस बहुत है, समझते हैं ना कपड़ा कॉन्शियस, ड्रेस कॉन्शियस, तो एक दिन लोगों ने उसको मजाक करने के लिए 5 लोगों ने प्लान बनाया, बहुत अच्छे कपड़े पहन के गया था, तो बनाया कि भाई 5 उसको अलग अलग जगह पे कहेंगे कि ये ड्रेस तो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तो 5 ने 1 घंटे में ये काम कर दिया अलग अलग जगह, कि अरे ये क्या पहना आज तुमने, कैसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। 1 घंटे के बाद वो भागा भागा गया उस ड्रेस को बदल के, जबकि ड्रेस बहुत अच्छी थी। मुझे बता के किया कि देखो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो दूसरे को बदलने के लिए अगर हमारी सूक्ष्म बुद्धि उसके अंदर छुपी हुई योग्यताओं को पहचान ले और उनको हम स्टिमुलेट करा दें, उनको प्रेरित कर दें, उत्तेजित कर दें, तो ये काम सहज हो सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए हमारे मन में शुभ भावनाएं और स्नेह। हमने तो ये सोच लिया था भाई ये 5 लोग समर्पित हो गए यहाँ, अब इनको जीवन तो यहीं बीतेगा, अगर ये सुस्त रहे तो न केवल अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए परेशानी रहेंगे, लेकिन यज्ञ पर बोझ और उनका जीवन अपना निराशा से भरा रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि रोज वो सुनेंगे कि भाई तुम कोई काम के नहीं, और जहां भी कोई काम देना होगा तो उन्हें लोग पहले ही एक तरफ रख देंगे कि भाई ये तो 5 कोई काम के नहीं है। तो मुझे ये हुआ कि अगर ये काम के हो जाएं, तो यज्ञ का भी काम बने और इनको जीवन में कभी निराशा ना आए, इनको भी गौरव हो अपने जीवन में, इनको भी अपनी समर्पणता की खुशी हो, इनको भी अपनी सेवाओं का बल मिले और संगठन में इनका मान बढ़े। संगठन एक ऐसी चीज है, उसमें अगर किसी का मान नहीं है, अगर किसी के बारे में सबकी ऐसी दृष्टि है, तो वो व्यक्ति बहुत नीचे उतरता है। तो हमने इस तरह से उनको डील किया और देखा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो हमारे बोल प्रोत्साहन देने वाले हों, संगठन में दूसरों का स्नेह सम्मान और सहयोग, इन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है। आपने नोट कर लिया होगा अपनी आंतरिक वृत्ति को चेक करना, हमारे बोल स्वमान के और वरदानी हों, 2 टॉप मोस्ट चीजें हैं। स्वमान के बोल हमारे बहुत सहज सी बात है, कब होंगे, जब स्वयं स्वमान में होंगे और दूसरों को स्वमान से देखेंगे। जो राजा होते हैं उनके बोल स्वमान के होते ही हैं। देखिए एक व्यक्ति है, हिस्ट्री में कहानियां हैं, गुजरात के राजाओं की कहानी है, कि एक राजा दूसरे पर गुजरात के अंदर बार बार आक्रमण करता था, बीच में एक नदी थी, और ये जो आक्रमण करने वाला राजा था बार बार हार जाता था और वो दूसरा राजा उसको अरेस्ट कर लेता था। और उसका नियम था फिर कि भाई अगर वो माफी मांग ले और चरण छू ले, अपना ताज उतार के चरणों में रखे और चरण छू ले तो जाओ वापिस लौट जाओ अपना राज करो। तो उसने 16 बार अपना ताज उसके चरणों में रखा, हाथ पैर छुए और वापिस चला गया। अगली बार उसने दूसरे राजा को अपने मिलाया, बहुत भारी अटैक किया, छुप छुप के किया और उस राजा को हरा दिया। अब वो उसकी जेल में था। अब ये उसको कहे कि ताज मेरे पैरों में रखो, चरण छुओ, तुम्हारा राज वापिस मिल जाता है। उसने कहा नहीं, मुझे राज नहीं चाहिए। तो एक उसका गौरव, उसको फिर मरवा दिया गया, ऐसा नहीं करना है। तो हाथी से उसको कुचलवा दिया जाता था, उसको हाथी से कुचलवा दिया गया। उसने वो सब स्वीकार किया लेकिन ताज रखना और चरण छूना ये स्वीकार नहीं किया। उसने 16 बार उसके चरण छुए। तो ये है स्वमान। आप सबने इतिहास सुना है, सिकंदर ने पोरू को हरा के रेस्ट कर लिया, पेश किया गया, पोरू से पूछा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उत्तर दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। सिकंदर ये बात सुन के खुश हो गया। उसके वहां कोई राजा किसी को अरेस्ट कर ले तो हाथ जोड़ेगा, माफ कर दो राज वापिस दे दो मुझे, जो चाहे ले लो, कर ले लो, संधि कर लो किसी भी। इसने कहा कुछ नहीं, जैसा एक राजा दूसरे से राजा से व्यवहार करता है। सिकंदर खुश हो गया और कहा मुझे आप जैसे मित्र चाहिए। उसको फ्रेंडशिप करनी थी भारत के किसी शक्तिशाली राजा से। वो देख चुका था कि पोरू बहुत शक्तिशाली राजा है, अगर इससे फ्रेंडशिप हो जाए तो भारत में आगे बढ़ना संभव होगा। तो ये है राजाओं का स्वमान। हम राजा महाराजा अनेक जन्म रहे हैं, हमारे पास भी स्वमान है और हमारे पास झुकना भी है। हम झुक किसके आगे रहे हैं और स्वमान कहाँ रख रहे हैं। हमारा सिर ऊंचा भी है और हमारा सिर झुकता भी है। किसके आगे झुकता है और किसके आगे स्वमान से खड़ा रहता है, बोलो। जो राजा हैं वो झुकेंगे तो नहीं, किसके आगे नहीं झुकेंगे, बोलो। ठीक बोल रहे आप, मुख से बोल रहे, किसके आगे नहीं झुकेंगे। शत्रु कौन है, माया। ठीक बोल रहे आप, जो राजा हैं वो माया के आगे झुकेंगे नहीं, वो कमजोरियों के आगे झुकेंगे नहीं, हार नहीं मान लेंगे अंदर, वो समस्याओं के आगे झुकेंगे नहीं। कोई मनुष्य उनको भयभीत करना चाहे तो वो भयभीत नहीं होंगे, लेकिन वो झुक जाएंगे किससे, नम्रता से, निरहंकारिता से। वो दूसरों की मान्यताओं के आगे झुकेंगे, कमजोरियों के आगे नहीं। वो दूसरों की शक्तियों के आगे झुक सकते हैं, उनके अहंकार के आगे नहीं। तो हम अपने संस्कारों में, स्वभाव में रॉयल्टी भरें, तब हमारे मुख से रॉयल बोल निकलेंगे। और वरदानी बोल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल चीज है और होनी है। हम में से अनेकों को वाक सिद्धि प्राप्त हो गई है, हो जाएगी, कईयों को हो गई है, कईयों को हो जाएगी, एक दो साल में, ज्यादा समय में नहीं, एक दो साल में ही। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वाक सिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है जो अपने बोल का प्रयोग दूसरों को स्थापित करने में नहीं करते, वरदान देने में करते हैं। वरदानी बोल जो बोल रहे हैं, बाबा के शब्दों में 50 बोल की जगह जो 5 बोल बोल रहे हैं, उनको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारे वरदान के बोल हमारी आंतरिक भावनाओं से बहुत प्रेरित होते हैं। एक और हमने अपने बोल को कम कर दिया हो, दूसरा जो व्यक्ति हमारे सामने जिससे हम बोल रहे हैं उसके लिए हमारे चित्त में निर्मल स्नेह और श्रेष्ठ भावना हो तो हमारा एक एक बोल उसके लिए वरदान बन जाएगा। तो इस तरह हमें स्वमान, सम्मान और वरदान, अपने बोल को इन तीन बातों से सुसज्जित करना है। अब आप स्वयं सोच लें किस तरह बोलें। और ये भी सत्य है कि जो मनुष्यों से ज्यादा बोलते हैं उन्हें भगवान से बोलने का आनंद नहीं मिलता, और जिन्हें सेवावा से रूरिहन का आनंद लेना हो उन्हें मनुष्यों से आवश्यकता से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि हमारी अंतर्मुखता नीरसता है। आज ये एक चर्चा हो रही थी कि वैराग और नीरसता दोनों समान हो जाती हैं कहीं कहीं, अंतर्मुखता सीरियसनेस में बदल जाती है कहीं कहीं। तो हम यहाँ स्नेह के माहौल में भी रहते हैं, बहुत मिलजुल के भी रहते हैं, पारिवारिक फीलिंग में भी रहते हैं, लेकिन वाक संयम को भी कायम रखते हैं। तो ऐसा अपना सभी नियम बना लें कि हमारी शक्तियां वाचा के द्वारा ज्यादा नष्ट न हो, बल्कि जो बाहर लोगों ने रिसर्च की है आप सबने थोड़ा बहुत सुना हो मंत्रों पर, तो मंत्रों की रिसर्च एक बात पर आधारित है कि मंत्रों में जिन शब्दों को चुना जाता है उनके उच्चारण से एक विशेष तरह की तरंग फैलती हो, चाहे उस मंत्र का अर्थ हो या ना हो, बिल्कुल मीनिंगलेस हो वो मंत्र, लेकिन उसमें शब्दों का चयन इस तरह होता है कि जिनके उच्चारण से एक ध्वनि में विशेष वेव्स क्रिएट होती हों, उनका प्रभाव दूर दूर पहुंचता है। इस आधार पर मंत्र सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो हमारे बोल, जिन बोल में, अब आप विचार करें, एक है लौकिक बोल, एक ईश्वरीय बोल। जो महावाक्य भगवान के मुख से निकले हों उनमें क्या भरा होगा, सोचने की बात है। भगवान ने निकाले ना, ब्रह्मा के मुख से उसी का मुख कहेंगे। जो शब्द भगवान के मुख से निकले हों उनमें किस तरह की वेव्स होंगी, और वही महावाक्य जब हमारे मुख से निकलेंगे तो उनमें भी उसी तरह की वेव्स होंगी। आप साकार बाबा की टेप सुनते हुए, अव्यक्त बाबा की टेप सुनते हुए अगर इस बात पर ध्यान दें कि जो वाइब्रेशंस उस समय थे उन महावाक्यों में जब उच्चारण किए गए थे, अब से 10 साल पहले ओम शांति भवन में एक मुरली चली, हम सब वहां बैठे थे, मुरली डीप साइलेंस पर थी, हम सब डीप साइलेंस के अनुभव में स्थित हो गए थे। वही मुरली अगर आज कैसेट के द्वारा हम सुनेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? वही अनुभव जो 10 साल पहले हुए थे अब हमें होने लगेंगे। तो उन शब्दों में वही वाइब्रेशंस होते हैं जो बहुत काल तक कायम रहते हैं। इस बात को समझते हुए हमें सोच लेना चाहिए बहुत अच्छी तरह कि हमारे शब्दों में अच्छे वाइब्रेशंस रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बात प्योरिटी की, बहुत पुराना सब्जेक्ट हो गया, पुराना है नया, पुराना हो गया है नया, धीरे बोलते हैं, डरते हैं ना प्योरिटी सबसे, सभी घबराते हैं, क्लास करने वाले भी घबराते हैं, कराने वाले भी, कि कुछ खतरा पैदा ना हो जाए। ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा लक्ष्य है सबका संपूर्ण प्योर बनना, यही लक्ष्य है या कुछ और? इसमें एक शब्द हम और जोड़ना चाहते हैं, संपूर्ण प्योरिटी को अपने अंदर लाना, या और कुछ इसके आगे भी कोई बात है? बोलो, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। बोलो, संपूर्ण प्योरिटी या इसके आगे भी कुछ है? उसके आगे तो कुछ है। प्योरिटी का बल, संपूर्ण प्योरिटी अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन प्योरिटी का बल इस संसार के अंधकार को प्रकाश में बदलेगा, बहुत बहुत बड़ी चीज। प्योरिटी का बल। अब हम बस इस बात पे सेंट्रलाइज कर दें इस टॉपिक को कि हमें अपनी प्योरिटी को बल बनाना है। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये, जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को लंबे काल की तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। जन्म जन्म की इम्प्योरिटी है, किसी किसी में बहुत ज्यादा है, तन में भी इम्प्योरिटी, किसी किसी के में ज्यादा, शरीर के अंग अंग में इम्प्योरिटी, आत्मा में भी, संस्कारों में भी, बोल में भी, दृष्टि में भी, विचारों में भी। किसी का जीवन अच्छा रहा है, उसको बहुत सहज होता है, किसी ने बाबा का बनते ही प्योरिटी को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिया है, उनको भी कठिनाई नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम अपने पास्ट को भूल जाएं और पास्ट के संस्कारों को और आदतों को खत्म कर दें। क्या करेंगे इसके लिए? पास्ट को भूल जाएं और उन संस्कारों के प्रभाव को नष्ट कर दें। कईयों के लिए केवल पास्ट की स्मृति ही बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत अच्छी प्योरिटी होते भी उनकी प्योरिटी बल के रूप में दिखाई नहीं देती। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास कोई इम्प्योर संकल्प न चलता हो, इसके बाद भी उसको अपनी प्योरिटी बल नजर नहीं आती, कि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा अनुभव नहीं होता। क्या करेंगे पास्ट को पहले भूलने के लिए? बोलो निखिल भाई, बताएंगे, आपका सब्जेक्ट है। भूलना है हमें पास्ट, और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जीवन का। जब तक नहीं भूलते तब तक कठिनाई होती है प्योरिटी में। कैसे भूलेंगे? और सुनाने के बाद भी तो नहीं भूलता, बोलो। और कुछ बहुत बाबा के द्वारा बताई गई बात है, सुना देना बाबा को, लिख के देना, ये सब तो ठीक बात है, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है, थोड़ी सी मदद मिल जाती है आत्मा को, पर यही सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं। हाँ, तो इसमें दो चीजें हमें करनी है। यही सब कुछ भूलता है, ये एक ऐसा सुंदर समाधान है। और कैसे भूलता है? मैं इसको मेडिकली इस तरह देखता हूं कि जैसे ही हम इस देह से न्यारे निराकार होते हैं, निराकार होने का एक अर्थ है कि हम अपने ब्रेन को जैसे इनएक्टिव कर देते हैं, उसका जो फंक्शन है उसको धीमा कर देते हैं, बिल्कुल धीमा। इसलिए जब आत्मा बहुत अच्छी तरह निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए तो हाथ कैसे हो जाते हैं? शीतल और शिथिल, कर्म इंद्रियां शीतल, कुछ सुनने की इच्छा नहीं, कुछ देखने और बोलने की इच्छा नहीं, बोलने की इच्छा नहीं। अगर हमसे बुलवाया जाए तो शुरू में एक मिनट कैसे बोलेंगे हम? बहुत धीरे। तो ये हुआ कि हमने अपने ब्रेन की सारी एक्टिविटी को शांत कर दिया था। और अगर हम इस तरह बार बार करने लगे तो जो कुछ छपा हुआ है हमारे ब्रेन में मेमोरीज, वो धीरे धीरे डल पड़ने लगेंगी, और डल होते होते लोप हो जाएंगी। यही तरीका है पास्ट को भूलने का। दूसरा तरीका, कैसेट से पुराने को मिटाने के लिए क्या कर देते हैं हम? नया, हम नए और बहुत अच्छे संकल्प क्रिएट करें, भर दें अपने ब्रेन में। ये काम हमें परपजली करना है, तो इस एक बड़ी समस्या से हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जिन्होंने अपने पास्ट को दबाया हुआ है, मिटाया नहीं है, वो जब वैसे ही सीन देखते हैं या वैसा ही माहौल उन्हें मिलता है तो उनकी स्मृतियां ताजी होकर उन्हें घंटों दिन डिस्टर्ब कर देती हैं, फोर्स बढ़ जाता है। तीसरी चीज, कोई भी चीज अगर आपको याद आ रही हो, रोज याद आती हो, तो आप कोशिश करेंगे स्ट्रिक्टली भी, हठपूर्वक भी, उसको रोज न लाने का बुद्धि में। मनुष्य को क्या है कि जो कुछ याद आ जाता है वो उस पर चिंतन करने लगता है, और रोज चिंतन करते करते भूली हुई चीज जैसे फिर से हम प्रिंट कर लेते हैं। इन तीन चीजों का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए, अपने पास्ट को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए देह की इंप्योरिटी है, दैहिक इंप्योरिटी जो आत्मा को विवश करती है इंप्योर थॉट्स के लिए, इंप्योर ड्रीम्स के लिए। इस बात पर हम ध्यान दें। एक बार मित्तल जी ने बताया, मित्तल जी तो नहीं है, उनके वहां यूपी में कोई एक ग्रुप है जो कच्चा भोजन खाएं उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। मेडिकल का ही है, आजकल चलता है, नेचर क्योर की एक शाखा, बिना पका हुआ भोजन खाओ। तो मैं ये पहले से जानता था, मैंने पढ़ी थी किताबें इसकी और देवताओं के बारे में भी ये सुना कि देवता सतयुग के आदि में पका हुआ भोजन ज्यादा नहीं खाते, नेचुरल भोजन ज्यादा खाया जाता है। तो मैं पहले से, मुझे किसी ने बताया था एक बहुत अच्छे डॉक्टर ने, कि क्योंकि देवता सतयुग में पका हुआ भोजन ज्यादा नहीं खाते, नेचुरल रूप से जो है उसे ज्यादा स्वीकार करते हैं, इसलिए भोजन उनके शरीर में सेक्सुअल हार्मोन्स पैदा ही नहीं करता। तो इन्होंने मुझे बताया कि इनका एक साथी उस ग्रुप में था, उसको कहा कि भाई राजयोग सीखो, हमारे यहाँ आओ, कैंप लगते हैं आबू में। उसने पूछा कि राजयोग क्यों सिखाते हैं आप, तो बताया कि पावन बनने के लिए हमारी जो सारी बुरी वृत्तियां हैं वो सब प्योर हो जाएं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम 5 साल से बिना पका हुआ भोजन खा रहे हैं और हम तो पावन हो गए हैं, चाहते हुए भी सेक्सुअल फीलिंग्स हम अपने अंदर नहीं देखते, भोजन का प्रभाव सचमुच है, इसमें कोई संदेह नहीं। कलयुग के अंत में हमारे भोजन में 2 चीजें बहुत खराब मिल रही हैं हमें, चाहे हम भी खा रहे हैं उन्हें। एक, उनमें खाद बहुत डाला जाता है, केमिकल्स, जिसका इफेक्ट भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाता ही है। दूसरा, जिस माहौल में वो उग रहा है, पक रहा है, जो उसको पैदा कर रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं, वहां का संपूर्ण इम्प्योर माहौल, उसको हम खा रहे हैं, बिना योग युक्त बना रहे हैं और खा रहे हैं। हल्के से योग में आधा मिनट योग लगा लिया और खा लिया, बातचीत करते हुए खा लिया, उससे हमारे बॉडी में और पीछे ब्रेन और माइंड में इम्प्योरिटी बढ़ती है। तो हमें इन 2 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। योग युक्त भोजन, चलो बनाना सबके हाथ में नहीं, खाना तो सबके हाथ में है। एक पावरफुल स्थिति में, अच्छी फीलिंग्स में, अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करके, दृष्टि के द्वारा अच्छे वाइब्रेशंस देकर हम भोजन को शुद्ध करें। और दूसरी चीज मैं एक सजेस्ट करूंगा, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है कि रोज, अधिक नहीं 5 मिनट केवल, जिसको ज्यादा प्योरिटी की प्रॉब्लम हो वो 10 मिनट, नहीं तो 5 मिनट एक रूटीन में टाइम भी आप निश्चित कर लें तो और अच्छा होगा। ऐसा आप अभ्यास करें कि बाबा से प्योर वाइब्रेशंस मुझे प्राप्त हो रहे हैं आत्मा को, और आत्मा उन्हें पूरी तरह ग्रहण करके सारे शरीर में फैला रही है। अब परपजली अंग अंग को प्योर वाइब्रेशंस दें, इससे बॉडी प्योर होगा और बॉडी की इम्प्योरिटी आत्मा को विवश नहीं करेगी, बहुत बड़ी चीज होगी। और आप देखेंगे इससे मन की निर्मलता किस तरह बढ़ती है। मैंने हॉस्पिटल में तो बात बार बार कही है, अब यहाँ बहुत सब बैठे हैं, एक संकल्प है बाबा की मुरलियों से, एक हायर कॉन्शियसनेस की बात है कि मैं इस देह में परम पवित्र आत्मा हूं। अगर आप इसको अपनी फीलिंग में लाते हैं, कहना और सोचना अलग, फीलिंग में लाते हैं, आप पाएंगे कि इस संकल्प के प्रभाव से मन के और संस्कारों के या शरीर के इम्प्योर जर्म्स नष्ट होते हैं। आप अनुभव करें इसको बहुत अच्छी तरह। जिसको अपनी प्योरिटी बढ़ानी है वो इस एक संकल्प पर अवश्य कंसंट्रेट किया करें, इसका आनंद लें। इस तन में मैं परम पवित्र आत्मा आई हूं ऊपर से, क्यों आई हूं? इस संसार में प्योर वाइब्रेशंस फैलाने के लिए। क्यों आई हूं? प्रकृति को पावन बनाने के लिए, अपनी दृष्टि से पवित्र वाइब्रेशंस देने के लिए। इन चीजों का आप अभ्यास अवश्य करेंगे। हम लोग यहाँ रहते हुए मैंने बहुत साल से एक विशेष प्रैक्टिस रखी अपने जीवन में, एक विशेष समय पर विशेष प्रैक्टिस के जब हमारे यहाँ विदेशी लोग आते हैं तब विशेष रखी है, और वो फिर आगे काम आती है कि जब हम उन्हें देखेंगे तो हम इस दृष्टि से देखेंगे कि मुझे इन आत्माओं को प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। इस फीलिंग से अगर देखते हैं, अगर ये हमें याद रहता है कि जो भी हमारे पास आते हैं उसको हम प्योर वाइब्रेशंस दें। आप अगर दुनिया में रहते हैं चारों आपके इम्प्योर लोग इम्प्योर वाइब्रेशंस हैं, अगर आप इस कॉन्शियस को जरा अपने जीवन में अपनी बुद्धि में रखें कि हम जिसको भी देखेंगे उसको प्योर वाइब्रेशंस देंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो इम्प्योरिटी की एक बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारी प्योरिटी की मंजिल क्योंकि बहुत लंबी है और फाइनल इसकी अचीवमेंट जब हमारे स्वप्न भी बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे, तब हम समझेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में इम्प्योरिटी नहीं रही, बिल्कुल स्वप्न भी हमारे स्वच्छ हो जाएं। तो हम अपनी इम्प्योरिटी को दबा कर रखते हैं या उसको नष्ट कर रहे हैं, ज्ञान के बल से हम उसको दबा कर रखते हैं, हमारी मर्यादाएं हैं इसलिए वो दबी रहती है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य पूरा करने वाली नहीं है। हमें अपनी तपस्या के द्वारा प्योरिटी को बढ़ाना है। तपस्या का बल प्योरिटी के बल को बढ़ाता है। इसलिए सभी को विशेष रूप से प्योरिटी को लक्ष्य बनाते हुए तपस्या अवश्य करनी है। तपस्या का रस जीवन में भरना है। बिना इस रस के इम्प्योरिटी दबी तो रहेगी, नष्ट नहीं होगी। और बाबा ने हम सबको पहले से वार्निंग दी हुई है कि अगर किसी की इम्प्योरिटी दबी रहेगी तो विनाश काल में जब पांचों विकार विदाई लेने से पहले फुल फोर्स से अटैक करेंगे तो दबी हुई इम्प्योरिटी अधिक फोर्स से बाहर आ जाएगी। इसलिए तपस्या के द्वारा इम्प्योरिटी के बीज को नष्ट करना है। बस इतनी ही बातें हैं, निराशा की कोई बात नहीं। मैं अपनी क्लासेज में ये बात प्योरिटी के संबंध में अवश्य जोर देता हूं कि हमें इस सब्जेक्ट में निराशा की जरूरत नहीं, तपस्या की जरूरत है। बार बार वही वही गलती न हो, बार बार वही वही संकल्प रिपीट न हो मन में, ये तो चाहिए हमें अटेंशन। लेकिन अगर अपने अंदर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी देखते हैं तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं, उसको भरने का लक्ष्य रख के आगे बढ़ना है। मर्यादाओं में हमें अपने को बांध कर रखना है अवश्य, और अगर कोई मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। मर्यादा का उल्लंघन दूसरा व्यक्ति कर रहा हो और डिस्टर्ब हम हो गए हो तो हमने भी उल्लंघन कर दिया। जितने वीक वो होंगे उतने वीक हम भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे उठने वाले संकल्प, हमारी बदली हुई भावनाएं हमें भी निर्बल बना देंगी। गौर कहो कि जो भी लिखना चाहें वो प्योरिटी पर स्वयं के लिए कमेंट्री लिखें, बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि बाबा की अव्यक्त में एक बहुत अच्छी मुरली प्योरिटी पर है जिसमें कहा गया है कि केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना ही संपूर्ण प्योरिटी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होना संपूर्ण प्योरिटी है। ऐसे ना हो व्यर्थ संकल्प खत्म हो गए हों और उसका स्थान भर लिया हो साधारण संकल्पों ने, केवल कामकाज के संकल्पों ने। कोई व्यक्ति कामकाज के संकल्प में इतना बिजी हो जाता है कि व्यर्थ को स्थान ही न मिले, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों का आनंद लेना। इसलिए एक एक कमेंट्री आप अपने अपने लिए लिख लें, बिल्कुल पर्सनल अलग अलग, और उसको इस तरह शुरू करें, शुरू इस संकल्प से करेंगे कि इस देह में मैं परम पवित्र आत्मा हूं मुझे अपनी पवित्रता के द्वारा इस संसार के अंधकार को नष्ट करना है। इस पवित्रता का प्रकाश सारे संसार के दुख को हरेगा। ये पवित्रता इस संसार को तनाव मुक्त कर सकती है। मुझे अब संपूर्ण पावन बनना है। अनेक जन्म मैंने इंप्योर जीवन देखा है। अब मुझे वो कार्य नहीं करना है जो सारा संसार कर रहा है। अब मुझे वो संकल्प नहीं रखने हैं जो हम स्वयं जन्म जन्म रखते आए हैं। अब हमारी मंजिल बदल चुकी। अब हमारा मार्ग प्योरिटी का मार्ग है। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं केवल उसी मार्ग पर चलना है। इम्प्योरिटी का मार्ग हम छोड़ चुके हैं, सदा के लिए छोड़ चुके हैं। दोबारा मुड़कर उस मार्ग पर नहीं देखना है। इस तरह के थॉट्स आप स्वयं लिखें तो अपनी प्योरिटी को स्वयं बल प्राप्त होगा। ओम शांति। अब जिनको स्टेज पर बैठना हो आ जाए और हम इस योग को प्योरिटी से संबंधित ही योग करेंगे। आपको हम एक थीम दे देते हैं, उसको आधार बनाकर योग करेंगे। कौन बैठेंगे? दो किसी को दिया टर्न। सबसे पहले स्वयं को स्थित करेंगे। मैं इस देह से बिल्कुल अलग भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान परम पवित्र आत्मा हूं। मुझसे चारों ओर प्योरिटी के व्हाइट वाइब्रेशंस फैल रहे, सफेद। और हम देखेंगे कि ये वाइब्रेशंस इतने फैल गए हैं कि सारा संसार इन सफेद वाइब्रेशन से व्याप्त हो गया है। सारे संसार में सफेद वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, भर गया है जैसे सारा संसार। और बाबा है ऊपर पवित्रता का सागर, उससे निरंतर प्योर वाइब्रेशन सफेद किरणों का एक समूह हमारे ऊपर उतर रहा है और फिर फैल रहा है। ऊपर से उतर रहा है, फैल रहा है। तीन जगह हम कंसंट्रेट करेंगे तो नींद किसी को भी नहीं आएगी। पवित्रता का सागर, कुछ सेकंड उस पर कंसंट्रेट करें, पांच सेकंड उससे आने वाली सफेद किरणें, फिर 5 सेकंड आत्मा से चार ओर फैलने वाली किरणें। इन तीनों पर कंसंट्रेट करेंगे आधे घंटे के लिए और सभी पूर्ण एकाग्रता के साथ इसका आनंद लेंगे।
ओम शांति।